नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बृहस्पतिवार को भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। चक्रवात प्रभावित श्रीलंका में मृतकों की संख्या 460 के पार। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत मानवीय सहायता बढ़ाई। भारत ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से इनकार के दावे को खारिज करते हुए इसे गलत सूचना फैलाने का एक और प्रयास बताया। और पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हिरासत स्थितियों की खबर पर गंभीर चिंता व्यक्त की। तेईसवें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा के दौरान दोनों देश कई समझौते कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों में समझौते होने की संभावना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते व्यापार और आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को रूस में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा और कुशल प्रवास को बढ़ावा देने के लिए श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में व्यापार घाटे को कम करने के प्रयास किए गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 और लड़ाकू विमान SQ-57 राष्ट्रपति की यात्रा के एजेंडे में शीर्ष पर होंगे। श्री पेस्कोव ने बताया कि दोनों देशों का व्यापार बढ़कर $63 अरब हो गया है और 2030 तक ये $100 अरब तक पहुंच जाएगा।
हम द्विपक्षीय व्यापार को $63 अरब से ज्यादा तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हमें उम्मीद है कि 2030 से पहले ये $100 अरब के लक्ष्य तक पहुंच जाएगी।
अमेरिका के शुल्क पर श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस समझता है कि भारत पर दबाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध किसी भी तीसरे देश के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से रूस का अच्छा मित्र है और रूस को भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर गर्व है। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका की मदद की जा रही है। श्रीलंका भयानक बाढ़, तबाही, जानमाल के नुकसान और बड़े पैमाने पर भूस्खलन से जूझ रहा है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने पुष्टि की है कि इस आपदा में मृतकों की संख्या 460 के पार हो गई है, जबकि 366 लोग अभी भी लापता हैं। सभी 25 जिलों में 1,50,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं, जिसमें कैंडी में सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने अपने राहत अभियानों को और तेज कर दिया है। भारतीय वायुसेना का IFC-1875 हेलीकॉप्टर मंदारम नुवारा में 2000 किलोग्राम राहत सामग्री पहुंचाकर इरुंगुवट्टा से 17 लोगों को निकाल चुका है। एक अन्य मिशन में कोटमले से 24 यात्रियों, जिनमें एक गर्भवती महिला और विदेशी नागरिक शामिल थे, उनको कोलंबो लाया गया। इसी बीच एक C-17 विमान फील्ड हॉस्पिटल का एक सेटअप और 70 मेडिकल स्टाफ लेकर कोलंबो पहुंचा, जिसे महियंगनाया में तैनात किया जाएगा, जहां बाढ़ की वजह से अस्पताल में काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने सिडावट्टा में NDRF ऑपरेशन की समीक्षा की, जहां टीमें अब भी 6 से 8 फीट पानी में डूबे इलाकों में घर घर जाकर लोगों को बचा रही हैं। विश्व दर्पण के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी।
भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैरियर बैटल ग्रुप की तत्काल तैनाती की, जिससे पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों और मकरान तट के करीब रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्री त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये भारत की प्रतिबद्धता, तत्परता और प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है।
सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, बल्कि हमारा कोई भी ऑपरेशन या अभ्यास, जैसे कि बनियल, थिएटर लेवल ऑपरेशन, एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स, हम इन सभी से सबक सीखते हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर भी इससे अलग नहीं था। हमने नौसेना मुख्यालय में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कूटनीति से लेकर सेंसर उपकरणों के प्रदर्शन तक सभी पहलुओं पर नजर रखेगी और ये समझेगी कि भविष्य में क्या बेहतर किया जा सकता है। ये प्रक्रिया जारी है, क्योंकि ऑपरेशन अब भी चल रहा है।
नौसेना प्रमुख ने बताया कि पिछले नौसेना दिवस के बाद से एक पनडुब्बी और 12 युद्धपोतों को नौसेना में शामिल किया गया है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया अपने अंतिम चरण में है। इसका उद्देश्य 6 उन्नत पनडुब्बियां खरीदना है। उन्होंने कहा कि नौसेना को 4 राफेल का पहला सेट वर्ष 2029 तक मिलने की संभावना है। भारत ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने संबंधी पाकिस्तान के बयान को खारिज किया है। भारत ने इसे देश के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने की कोशिश बताया। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि श्रीलंका में मानवीय सहायता ले जा रहे एक पाकिस्तानी विमान के लिए हवाई क्षेत्र अनुमति का आग्रह कल करीब 1 बजे इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को मिला था। उन्होंने कहा कि मानवीय विषय की अर्जेंसी को देखते हुए सरकार ने आग्रह को तुरंत स्वीकार किया और उसी दिन शाम 5:30 बजे हवाई क्षेत्र को इस्तेमाल की अनुमति दे दी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हिरासत स्थितियों की खबर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने पाकिस्तान सरकार और पंजाब प्रांत के गृह विभाग के संवैधानिक प्रक्रिया, सुरक्षा और मानवीय व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने का आह्वान किया है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहें, यातना के आरोपों और स्वास्थ्य चिंताओं के बीच उनकी बहन उज्मा को आज रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान से मिलने की अनुमति दे दी गई। इससे पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने रावलपिंडी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके धमकियां भी दी थी। पाकिस्तान इस समय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV की सबसे तेजी से बढ़ने वाली महामारी का सामना कर रहा है। पिछले 15 वर्ष में HIV संक्रमण के नए मामले 200% तक बढ़े हैं। HIV संक्रमित लोगों की संख्या 2010 में 16,000 से बढ़कर 2024 में 48,000 हो गई है। यह जानकारी विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और UN एड्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दी गई। चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन और जापान के जहाजों के पूर्वी चीन सागर में विवादित सेनकाकू द्वीप समूह के पास टकराव इस विवाद का कारण है। चीन ने कहा है कि एक जापानी नौका उसके जल क्षेत्र के भीतर आ गई थी, जिसके बाद चीनी तटरक्षक बल ने आवश्यक कार्रवाई की। इसके जवाब में जापान ने बताया है कि दोनों चीनी तटरक्षक जहाज उसके जल क्षेत्र के भीतर घुसाए। जापान ने मछली पकड़ने वाली नौका को सुरक्षित करते हुए चीनी जहाजों को वापस चले जाने का आदेश दिया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री साने तकाईची ने ताइवान को चीन के हमले के जवाब में सैन्य कार्रवाई का सुझाव दिया था। तनाव के कारण चीनी जहाज द्वीपों के आसपास लगातार गश्त कर रहे हैं। हांगकांग के अधिकारियों ने आज न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का आदेश दिया है, जो शहर में दशकों की सबसे भीषण आग के कारणों का पता लगाएगी। समिति उन भवनों के नवीकरण को देख रेख के कार्यों की भी समीक्षा करेगी जिन पर आग भड़काने का आरोप है। इस आग में 156 लोग मारे गए थे। पुलिस ने पिछले हफ्ते वांग फोक कोर्ट कॉम्प्लेक्स की दुखद घटना की आधिकारिक जांच में गैर इरादतन हत्या के शक में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 12 लोगों के भ्रष्टाचार की जांच भी की जा रही है। खेलों में तमिलनाडु के मदुरई में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने अंतिम पूल मुकाबले में स्विट्जरलैंड को 5-0 से हरा दिया। भारत अपने तीनों पूल मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश कर गया है। वहीं क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल रायपुर में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बृहस्पतिवार को भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। चक्रवात प्रभावित श्रीलंका में मृतकों की संख्या 460 के पार। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत मानवीय सहायता बढ़ाई। भारत ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से इंकार के दावे को खारिज करते हुए इसे गलत सूचना फैलाने का एक और प्रयास बताया। और पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हिरासत स्थितियों की खबर पर गंभीर चिंता जताई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।